श्रीअद्वैतगदाद श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। हिंदी कृष्णा बुक देंगे मुझे? तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से ये जो भक्ति के विभिन्न धरातल हैं, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, तो भजन क्रिया का के जो भजन क्रिया के धरातल पर छह प्रकार के जो अनर्थ हैं, एक जो साधक हैं जो साधना करता है उसके हृदय में उदित होते हैं या उसके जीवन में आते हैं, तो उनका वर्णन किया था। और हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी जो बुक है श्री चैतन्य शिक्षामृत, उस ग्रंथ में इस दिव्य रहस्य को प्रकट किया है कि कृष्ण लीला के जो आसुर हैं वो कैसे अलग अलग अनर्थों को सूचित करते हैं, अलग अलग आसुर अलग अलग अनर्थों को सूचित करते हैं, तो उसका वर्णन हुआ है। तो आज हम एक विशेष आसुर और जो पहले आसुर हैं जिनका कृष्ण ने क्या किया है, वध किया है, तो वो आसुर है पूतना, मिसेस पूतना, तो उनके बारे में हम सुनेंगे और उनके किस प्रकार से भगवान उस आसुर का वध करते हैं। तो शास्त्र वर्णन करते हैं, स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है इस पूतना के लीला का, और जिसको हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं। तो भागवतम के दशम स्कंद के छठे अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ने इस लीला का वर्णन किया है, और इस अध्याय के अंत में वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति के पूतना वध को सुनता है तो उसके साथ क्या होता है, ये यतत पूतना मोक्षम कृष्णयार भकम अद्भुतम शुनुयाद श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। कोई व्यक्ति ये सुनता है कि किस प्रकार से फेथ और डिवोशन के साथ, श्रद्धा और भक्ति से पूतना वध को सुनता है कोई भक्त, तो क्या सुनता है कि किस प्रकार जो गोविंद है कृष्ण, जो छोटे बालक के रूप में थे, तो उस समय भगवान ने कैसे उस पूतना राक्षसिनी को मारा था, ये दिव्य लीला कोई सुनता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, गोविंदे लभते रति, गोविंद के प्रति उसका अटैचमेंट विकसित हो जाता है अपने आप, यदि वो ध्यान पूर्वक सुनता है पूर्ण श्रद्धा के साथ। श्रद्धा मीन्स ये नहीं कि पहले संशय होगा कि कैसे मारा, छोटे से इतने छोटे बालक जो कृष्ण हैं, इतने छोटे से थे, अभी कुछ ही दिन हो गए थे उनको जन्म लिया था उन्होंने, और कैसे मार सकता है कोई बच्चा इतने बड़े आसुरिनी को, तो कई बार फेथ नहीं होता, जस्ट ऐसे लगता है कि ये काल्पनिक कथाएं हैं, सुनने के बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है और उसके दिमाग में ये रहता है कि कृष्ण चाहे बालक क्यों ना हो वो क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण को भगवान बनने के लिए किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ा या यूनिवर्सिटी में कि जाके वह डिग्री ले लेता हूँ क्या मैं भगवान बन गया हूँ, तो ऐसे नहीं, भगवान जन्म लेते ही क्या है, भगवान है, यह कृष्ण की खासियत है। कृष्ण ने अलग अलग आसुरों को मारा, कृष्ण लीला की खासियत क्या है, कि भगवान को अपना रूप को कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ा, लेकिन बाकी जो अवतार आए हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा। हाँ, भगवान वामन आ गए, उनको 3 पग भूमि लेने थी, पहले दिखाया कुछ और फिर किया कुछ। हाँ उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ा, मीन्स शरीर बड़ा करना पड़ा और फिर लंबी टांगे उनकी फैली। हाँ तो उनको एक्स्ट्रा करना पड़ा। हिरण्यकशिपु को मारना था तो भगवान को भयानक नरसिंह बड़ा रूप धारण करना पड़ा, तभी मार पाए। तो ऐसे अलग अलग अवतार उनको, जैसे वराह रूप में भगवान आए। सुअर तो छोटा होता है लेकिन ये सुअर बहुत बड़ा था, जिसने पृथ्वी को अपने मुंह में या नाक के बाद धारण किया था। तो ऐसा बड़ा बड़ा कुछ करना पड़ा, लेकिन कृष्ण को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। कृष्ण छोटे है फिर भी असुरों को मारने के लिए, ये नहीं कि अभी वो उतना इतनी बड़ी है तो कृष्ण बालक छोड़ के, अपना बालक रूप छोड़ के बड़े हो गए मारने के लिए, नहीं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि इसी कारण हम जान सकते हैं कि कृष्ण क्या है, स्वयं भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण है। हाँ इससे जान सकते हैं कि इस के लिए उनको कोई और कुछ अलग से कोई जो रूप है वो धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो पूतना की जो लीलाएं हैं, इसका वह ये जो लीला है कई ग्रंथों में आती है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण, हाँ जो ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, हरिवंश पुराण, इन ग्रंथों में और विस्तार से पूतना वध को समझाया गया है जो व्यास देव ने। तो ये जो पूतना है जिनके बारे में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो वृंदावन में शुरू हो गया कथा। तो वृंदावन में जब नंद महाराज और ये सब थे, तो नंद महाराज जब मथुरा चले गए वहाँ, तो वसुदेव को जब नंद महाराज वापस वृंदावन आ रहे थे, तो वसुदेव ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विशेष घटना वृंदावन में होने वाली है, हाँ कुछ संकट मुझे महसूस हो रहा है। तो जब नंद महाराज वापस आते हैं मथुरा से वृंदावन, तो आने के बाद उनको वो महसूस होता है, हाँ दूर से उनको दिखाई देता है कि क्या हुआ है, धुआं वगैरह दिखाई दे रहा था उनको दूर से। तभी उनको लगा कि वृंदावन में मेरे जो कृष्ण हैं, हाँ वो शायद संकट में ना हो, या वृंदावन वासियों के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति तो नहीं आई है। तो नंद महाराज ये सोच ही रहे थे, तो उनको आने के बाद पता चला कि क्या हुआ था, क्योंकि जो कृष्ण प्रकट हुए थे वृंदावन में, तो जो कंस हैं उनको हर समय अपने मृत्यु का भय था। हर समय वो भयभीत थे कि वो अभी एक बालक पैदा हुआ है तो ये मुझे निश्चित रूप से मारेगा। तो कृष्ण ने क्या, इन्होंने क्या किया, कंस ने उनके सारे जो मित्र हैं उन सबको मीटिंग बुलाई उनकी, और मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक जो पूतना राक्षसी है वो जाने के लिए योग्य है। पूतना राक्षसी को कहा जाता है खेचरी। हाँ खे का मतलब है कि जो खे में शब्द खे पौरुषम नृषु, भगवद गीता में ना एक श्लोक शब्द खे, आकाश में शब्द हो, ऐसे भगवान कहते हैं सातवें अध्याय। हाँ शब्द खे मीन्स आकाश, तो खेचरी क्यों कहा जाता है पूतना को, क्योंकि खे मीन्स आकाश में, जो चरी मीन्स चलती है, जो आकाश में चलती है, हाँ वो ये खेचरी है। हाँ और ये बहुत ही एक्सपर्ट थी इस कार्य में, और विशेष रूप से किस चीज में एक्सपर्ट थी, तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो एक्सपर्ट थे कि जो बालक है उनको मारने में एक्सपर्ट थे, बालिकाओं को नहीं मारते थे। उसने इवन जो श्रीमती राधा रानी हैं और उनके जो सिस्टर वगैरह हैं वो भी प्रकट हुए थे अलग स्थान में, तो इन्होंने इनको, उन बालिकाओं को चुराया था। और जब ये ब्रज में आई तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को ड्रॉप कर दिया, तो श्रीमती राधा रानी इसलिए वो लोटस में मिली कि नहीं उनको, वृषभानु और कीर्तिदा को। हाँ तो ये पूतना ने उनको हरण कर लिया था, हाँ और फिर वृंदावन में उनको ड्रॉप कर दिया था। तो ऐसे बाकी और कई जो विशेष गोपियां हैं ये पूतना ने चुराए हुए थे, तो ये पूतना लेकिन उन बालिकाओं का वध नहीं करते थे, हाँ लेकिन किसको मारते थे, जो बालक है अब उनको मारने में ये बहुत एक्सपर्ट थे। तो शास्त्र कहते हैं कि वृंदावन में आसुर आ नहीं सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, हाँ लेकिन कृष्ण को एक विशेष लीला करने थे, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण की जो लीला शक्ति है उन्होंने उनको इनवाइट किया पूतना को। तो पूतना जब वृंदावन में आए तो बहुत ही जो सुंदरी का रूप धारण करके आए थे, ऐसे लग रहा था सारे वृंदावन वासी इवन देवता भी नहीं पहचान पा रहे थे, हाँ सबको लग रहा था कि ये तो लक्ष्मी है अपने स्वामी कृष्ण को मिलने आई है। तो जब ये आए तो वर्णन आता है कि इसने, क्योंकि पूतना बकासुर की बहन है ना, ये पता है ना आपको, जब ने पढ़ा होगा, हाँ बकासुर की जो बहन पूतना है, तो पूतना जब आती है तो ये एक पक्ष का रूप धारण करके आती है वृंदावन के एरिया में, और वहाँ आने के बाद एक सुंदरी स्त्री का रूप वेश धारण करके आती है। तो सारे ब्रजवासी देख रहे थे और उसके हाथ में कमल का फूल भी था, इतनी सुंदर लग रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि लक्ष्मी आई है। तो जब यशोदा और रोहिणी खड़े थे उनके महल में, तो उस समय यशोदा माता पूछते कि आप कहाँ से हो, तो कहती है कि मैं तो मथुरा के एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ कृष्ण ने जन्म लिया है, उनको देखने और उनको आशीर्वाद प्रदान करने आए हूँ। तो ब्रजवासियों को कोई ऐसी ईर्ष्या नहीं है, हाँ नंद या यशोदा माता या रोहिणी, उन्होंने कहा अच्छा है, मेरे पुत्र का आशीर्वाद देना चाहती है, आपका स्वागत है, आप जाओ अंदर, हाँ जहाँ कृष्ण लेटे हुए हैं। तो ये जब चले जाती है अंदर, तो कृष्ण लेटे हुए थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद की थी, हाँ तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो वैष्णव गण हैं या वैष्णव आचार्य हैं वो बताते हैं कि क्यों आंखें बंद कर देती, क्या था कारण, अलग अलग रीज़न बताए थे, जैसे याद होगा
देखना नहीं चाहते, इसने इतना बच्चों
को बंद किया था, हाँ
इसके देखना
नहीं चाहते, हाँ तो ये भी एक रीजन है। और
भगवान मालिक ये बताओ ना, मैंने कहा बंद करने वालों ना,
हाँ
तो लेडी का बात नहीं करना चाहते,
हाँ शास्त्रों के अनुसार जो बालक है, वृद्ध है, स्त्री है और ऐसे पांच जो हैं कैटेगरीज, उनका वध नहीं करना चाहिए, अबला स्त्री ऐसे कुछ है तो इनका वध नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा ये उचित नहीं है, मैं पहले ही किसी आसुर को मारने की मेरे ऊपर आफत आई है, वो तो स्त्री है, इसलिए उन्होंने अपने आंखें बंद की। और क्या था,
तो आंखों से आंखें मिल जाती है तो वो भी उसके भी हृदय में दिया मोहन आ सकती थी और भगवान को भी मतलब मोह आ सकता था, ऐसा नहीं
होता है,
ऐसा भी मतलब नहीं।
अच्छा
और मैंने
सुना था। और
कृष्ण को पहले तो नहीं है,
हाँ ये नहीं है। और तो कृष्ण ने इसलिए भी आके ये किए थे कि वो डर ना जाए, हाँ इनको देखकर, क्योंकि कृष्ण ऐसी पर्सनालिटी है, मतलब वो फायर है, लेकिन वो फायर ढकी हुई किस चीज़ से, राख से ढकी होती है ना आग या कोई, तो आपको पता नहीं चलता ऊपर से तो लगता है राख है लेकिन उसके नीचे फायर है। तो कृष्ण को लगा मैं अपनी आँखें खोल के रखूँगा तो ये डर जाएगी और ये फिर मुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहेगी, इसलिए उन्होंने आपने आपको नॉर्मल रूप से प्रेजेंट किया था। और भी शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण ने सोचा कि ये मेरी नर्स है, मतलब मेरी ध्यान देने वाली मदर ही है एक, हाँ नर्स होती है ना, कृष्ण ने अपने आपको फुल्ली उनके प्रोटेक्शन में डाल दिया, ये जो मेरे लिए करेगी वो उचित है। तो इस प्रकार से भगवान ने पूर्णतया इस पूतना को अपने आप को समर्पित किया था। और ये पूतना रात के समय जब आई वृंदावन में, तो ऐसा वर्णन आता है कि रात के समय मध्य रात्रि में ये टाइगर के समान, शेर के समान गर्जना करते हुए आए थे और उस पक्षी का रूप धारण किया था जो हमारे यहाँ ऊपर है ना,
उल्लू,
हाँ इस रूम में वो जो आसुरिणी पूतना है वो आए थे और कृष्ण उस समय उसमें लेटे हुए थे, क्रैडल क्या कहते हैं अपना, पालने में, हाँ पालने में लेके लेटे थे। तो और ये आए थे विशेष रूप से कृष्ण को वध करने के लिए, आज जब ये आसुरिणी आई तो उसने तो लेकिन आज तक उसने जो ऐसे बालकों का वध नहीं कर पाए थे वो वृंदावन में या किसी और स्थान में, आज तक उसने केवल ऐसे ही बालकों का वध किया था जो मदर फादर कृष्ण से विरोध में थे। कंस के जितने भी अनुचर थे उन्हीं के बालकों को मारा था पूतना ने, और कंस को लगता था कि मेरे शत्रुओं को मारते जा रही है पूतना, क्योंकि कृष्ण ने अरेंजमेंट की थी शुरुआत से। और अंतिम समय में कृष्ण ने अभी सोचा कि अभी इसका बहुत अधिक हो गया है जो पापमय कार्य है, मुझे अभी इसको रोकना होगा। क्योंकि पूतना को, पूतना की खासियत क्या थी कि वो अलग अलग कोई भी रूप धारण कर सकती थी, क्योंकि दुर्वासा ने उसको ये दिया था, आशीर्वाद दिया था दुर्वासा मुनि ने, हाँ पूतना ने उनको प्रसन्न कर लिया था, तो उनके आशीर्वाद के कारण ये अलग अलग रूप धारण करते थे। तो वृंदावन में आकर उसने ये सुंदर युवती का रूप धारण किया और फिर वो कृष्ण के पास गई कृष्ण को मारने के लिए। तो कृष्ण को जब मारने के लिए जाती है ये जो आसुरिनी है पूतना, तो कृष्ण को उठा लेती है और क्या करती है अपने स्तनपान कराती है, हाँ स्तन पिलाती है। तो जैसे ही स्तनपान कराया तो कृष्ण ने क्या किया, दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। हाँ तो जैसे प्राण खींच लिए कृष्ण छोड़ नहीं रहे थे, तो वो घर से बाहर भागने लगे चिल्लाते हुए, हाँ पूतना जो है छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। तो कृष्ण ने बिल्कुल पकड़ाया, दूध पी रहे और वो पहले तो सुंदरी थी, जैसे कृष्ण ने प्राण खींचने लगे तो वो समझ गए कि ये सामान्य बालक नहीं है, आज तक मैंने कई बालकों को का वध किया था लेकिन ये ऐसा वैसा बालक नहीं है। तो पूतना बाहर आती है और फिर अपना जो विराट ऐसा भयानक रूप धारण करती है, इतना बड़ा बड़ा रूप जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए आज दिन में पूतना का जो चैप्टर है। हाँ तो कई ऐसे उसके अलग अलग बॉडी शरीर के अंगों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने किया है, पहाड़ के समान या उनके लंबे लंबे बाल, मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ों का वर्णन किया है, वो विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। तो जो पूतना ने अपना भयानक रूप धारण किया और वो ऐसे स्थान में गिरी जहाँ कोई घर नहीं था या उसके गिरने से कोई ब्रजवासी की मृत्यु नहीं हुई, हाँ जहाँ पेड़ थे ऐसे स्थान में गिरी। और फिर कृष्ण बिल्कुल आराम से उसके स्तनों के पास छाती में खेल रहे हैं और दूध पी रहे हैं। तो जो ब्रजवासी हैं हाँ जो माताएं सीढ़ी लगाती हैं हाँ और कृष्ण को उठाने के लिए हाँ उसके ऊपर चढ़ती हैं, और कृष्ण को कोई चिंता नहीं है, उनको कोई भय नहीं है। तो कृष्ण खेल रहे थे आराम से, कृष्ण को उठा के वो जो गोपी या मदर यशोदा को देती है, क्योंकि माँ यशोदा बहुत अधिक इसमें थी, कष्ट में थी। तो इस प्रकार से जो कृष्ण है उसका वध करते हैं और फिर शास्त्र वर्णन करते हैं कि ये जो पूतना है पिछले पूर्व जन्म में कौन थी, रत्नमाला थी, हाँ उनकी जो डॉटर थी रत्नमाला, बलि महाराज की पुत्री थी रत्नमाला। तब जब भगवान वामन देव बलि महाराज के पास आए थे ये करने के लिए दान, ब्रह्मचारी का वेश धारण करके कि मुझे बस तीन पग भूमि चाहिए, हाँ तो ये रत्नमाला भी वहाँ अपने पिता के साथ अलग से बैठी थी। जब इस बालक को देखा तो इस रत्नमाला के हृदय में इच्छा हुई कि ये कितना सुंदर बालक है, हाँ ऐसा मुझे पुत्र हो। हाँ पहले जब वामन आए अभी तो उन्होंने कोई मांग नहीं की थी, डिमांड नहीं की थी आपने, और फिर वामन ने जब बोलना शुरू कर दिया कि हे बलि महाराज मुझे तो तीन पग भूमि चाहिए, मैं तो छोटा सा ब्राह्मण हूँ। हाँ और जब भगवान ने अपना फिर तीन पाव भूमि के नाम पर पूरा सारा साम्राज्य ही ले लिया, तीनों लोक अपने कर लिए, तो इनको रत्नमाला को बड़ा गुस्सा आया, कहते कि ऐसा मेरा भी बालक होगा होता तो उसको मैं मार डालती विष पिला के। तो भगवान ने देखा ये बड़ी उसकी ये डिजायर थी, तो कृष्ण ने उसको पूतना का ये फॉर्म देकर दोनों ही इच्छाएं पूर्ति की है ना, कि उसने दूध भी पिलाया और मारा भी। हाँ, तो भगवान ने उनको माँ का स्थान प्रदान किया। हाँ, यहाँ ये बात उद्धव कहते हैं इनको, विदुर को शायद, कि कैसे है कृष्ण इतने दयालु, कृष्ण चले गए मुझे छोड़कर अपने धाम, मुझे अकेले छोड़ा यहाँ प्रीचिंग के लिए। आज बता रहे थे ना क्लास में, कहते कि अहो बकीयम स्तनकाल कूटम। हाँ, ये बकी, बकी मीन्स बक की बहन कौन है, बकी बकासुर की बहन, बकी मीन्स पूतना। भागवत में शुक्रदेव उद्धव कहते कि आहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया। हाँ, कि उन्होंने, उसने क्या किया था, अपने स्तनों को विष डाला था और साधु के वेश में आए थे, लेकिन असाधु का कार्य किया था उसने, है ना। एक अच्छे स्त्री के रूप में आए थे, लेकिन एक बड़ा क्रूरता में कार्य किया था। इतना किया फिर भी कृष्ण कितने दयालु है, हाँ, उसको माँ का स्थान प्रदान करते हैं आध्यात्मिक जगत में। गोलोक वृंदावन में ये माँ के स्थान में है। हाँ, यशोदा नहीं है लेकिन एल्डरली गोपीज, तो इतने कृष्ण दयालु हैं। तो इस प्रकार से, इस लीला से हम सीखते हैं कि ये जो पूतना है, फिर उसका वध होने के बाद तो जो ब्रजवासी थे उन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ी और ये सब लाया और उसके हाथ पाँव सर ये सब सब काट काट के छोटे छोटे टुकड़े किए, क्योंकि इतना बड़ा शरीर जलाना बड़ा कठिन है। तो इन ब्रजवासियों ने वो शरीर जलाना शुरू किया, हाथ जलाए, सर अलग से जलाया, पाँव अलग से जलाए, सब अलग अलग पार्ट काट के हाँ ब्रजवासियों ने जलाए। तो क्या हुआ था जलाने से, हाँ, सुगंध चंदन के समान उसके शरीर से सुगंध निकल रही थी। और वहां नंद महाराज एंट्री कर ही रहे थे ब्रज में, तब उनको कहते आज क्या है, ब्रज में सुगंध आ रही है सब जगह हवा में, हाँ धुआं हो रहा है। तो क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था, कृष्ण का स्पर्श किया था। जगन्नाथ जी के पास टाइम में भी आता है कि जो शबर थे एक विश्व वसु, वो जब नील माधव की पूजा करने जाते थे तो वो जब वापस आते थे तो उनके शरीर से सुगंध निकलती थी। हाँ, तो भगवान के जो चरण और शरीर है उससे कई प्रकार की सुगंध निकलती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस, हाँ अलग अलग सेंट उनके भगवान के शरीर से निकलते हैं। तो इनके शरीर से भी ऐसी सुगंध निकल रही थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि ये जो पूतना है ये कौन से अनर्थ को प्रकट करती है, कल हमने डिस्कस किया था, कौन सा, फॉल्स गुरु, मिथ्या या फिर ढोंगी गुरु का, जो मिथ्या गुरु का जो अनर्थ है उसको ये सूचित करती है। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि दो प्रकार के मिथ्या गुरु होते हैं, एक तो होता है हमारा मन, मीन्स हम स्वयं ही मिथ्या गुरु हैं, अपने मन की सुनते हैं, और दूसरा है जो एक्सटर्नल फॉल्स गुरुज हैं, बाहरी रूप से जो फॉल्स गुरु हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि ऐसे जो फॉल्स गुरुज जो इंस्ट्रक्शंस हमें देते हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हम कृष्ण भावना में उन्नति नहीं कर पाते, और हमारा मन भी जो ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है जो कृष्ण भावना में हमें सहायक नहीं हो, तो ऐसा मन भी क्या है, फॉल्स गुरु है, ढोंगी गुरु है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज वर्णन करते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे कृष्ण भावना में आता है, हाँ, तो जैसे हम भक्ति में आ जाते हैं, ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करते हैं, तो तुरंत हमारे माता पिता क्या करने लगते हैं, हमें उपदेश देने शुरू करते हैं उनको, वो लोग भी बाद में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति मंदिर ज्वाइन भी कर लेता है या आता है, तो जो फॉल्स गुरुज हैं, जैसे कंस ने क्या किया था, पता चला कि कृष्ण ने जन्म लिया है अभी उनको मारना चाहिए, तुरंत अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया मीटिंग की और सोचा कि किसको भेजना है, तो पूतना का नाम दिया गया। तो वैसे माता पिता देखते कि अभी बच्चा ब्रह्मचारी बन गया है तो पूरे रिलेटिव आ जाते, सब आते हैं, कंस के अनुचर सारे आते आज सोचते किसको भेजा जाए। हाँ, आपके बड़े भाई को भेजा जाए, वो जाके समझाएगा। हाँ, या उस रिलेटिव्स को भेजा जाए, भेजते कि नहीं हमारे पास किसी को भेजते, और वो पूतना के समान आता है और हमें इंस्ट्रक्शन देता है, नहीं बेटा आपके लिए मंदिर घर में ही बनाएंगे, वहाँ क्या आवश्यकता है, शादी मत करना, काम मत करना, प्रेम करना बस। तो इस प्रकार से ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस किसकी है, मिथ्या गुरु की है। तो मिथ्या गुरु क्यों, क्योंकि जो गुरु है उसके अपने क्या है, स्वार्थ है, उसके अपने स्वार्थ है। तो ये सारे लोग जो होते हैं, ये सारे मिथ्या गुरुज हैं, जिनको हम माता पिता और ये सब कहते रहते हैं, है ना। यदि वो भक्त नहीं है, उनके उपदेश यदि कृष्ण भावना के लिए सहायक नहीं है, हाँ, तो ऐसे लोग क्या है, पूतना के प्रतिनिधि हैं, पूतना के प्रतिनिधि है। लेकिन यदि किसी भक्त के हृदय में या भक्त कृष्ण भावना में दृढ़ हो जाता है, तो कृष्ण की सहायता से ऐसे पूतना जैसे आसुर अपने आप खत्म हो जाते हैं। हाँ, अपने आप, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप स्ट्रांगली पकड़े रहते हो कृष्ण को, हाँ, जैसे कृष्ण ने पकड़ के रखा था किसको, पूतना को, उसको मार ही दिया। यदि आप कृष्ण को पकड़ते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, उस आसुर को पकड़ते हैं, और फिर आपकी कृष्ण भावना में बाधा भी नहीं आती। तो बचपन से हम जब पढ़ाई भी करते हैं तो उस समय ऐसे आसुर होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, कॉलेज में टीचर्स होते हैं, तो वो बचपन से हमें सिखा ये बताते हैं, हमारी शारीरिक देहात्म बुद्धि में वृद्धि करते हैं, देहात्म बॉडीली कॉन्शियसनेस और बढ़ाते हैं। तुम्हें पायलट बनना है, हाँ, बचपन से ही। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, बचपन से वो बॉडीली जो चेतना है उसको बढ़ाते हैं। तो ऐसे गुरु क्या है, या ऐसे गुरु, ये सब ढोंगी गुरु हैं। हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं इस प्रकार से जो उपदेश देते हैं वो सारे पूतना के प्रतिनिधि हैं। इवन ऐसे साधु जिन्होंने साधु के वेश में, हाँ, मतलब धर्म के वेश में भौतिकता का प्रचार, हाँ, धर्म का वेश उन्होंने धारण किया है लेकिन जो अधर्म का प्रचार करते हैं, ऐसे साधुओं का तो अभी बहुत बोलबाला है कलियुगा में, हाँ, जो पूतना के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो फुल्ली प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो वो क्या करते हैं कि आप सब कुछ करो, बस मैंने जो मंत्रा दिया है उसका जाप करो बड़े ध्यान से, और मंथली डोनेशन मुझे दो, डॉलर दे दो। लेकिन आजकल तो ये इतने चतुर हैं कि इन्होंने वो मनी बॉक्स दे दिया है शिष्य को, दीक्षा देने के साथ साथ डेली बॉक्स होता है ना, बच्चन डालते ना एक एक रुपया पहले गुल्लक, वो दीक्षा के साथ साथ गुल्लक भी दे देते हैं कि गुरु की सेवा के लिए, हाँ, डालो और महीने में लेके आओ वापस। तो ये सब कौन है, पूतना के पक्के प्रतिनिधि हैं, हाँ, ये सब ढोंगी गुरु हैं। इस प्रकार से हम यदि कृष्ण भावना में दृढ़ रहते हैं, कृष्ण भावना के कार्यकलापों में जो हमें दिए हैं, तो फिर ये जो हमारा मन भी जो पूतना का या ढोंगी गुरु का काम करता है, मन भी उपदेश देता है बहुत अच्छी तरह से, हमें उपदेश देता है कि नहीं, कई चीज़ें इतना अच्छी तरह से समझाता है कि हम फुल्ली कन्विंस हो जाते हैं, हाँ, और कहते हैं नहीं गुरु की बात ठीक नहीं है, हाँ, मैं ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि यदि व्यक्ति जो साधक है वो कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और जो दी गई एक्टिविटीज़ है उसको सीरियसली करता है, तो कृष्ण की सहायता से ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी, क्या कहेंगे, ढोंग करना, मीन्स क्या, जैसे हम ढोंग करते हैं, जैसे ढोंग करते हैं ना, अचानक कोई सेवा आती है तो प्रभु जी आप ये सेवा करिए, तो हम कहते हैं नहीं अभी तो मेरा बस अभी पेट दर्द शुरू हो गया है आज से, हाँ, कुछ ना कुछ ढोंग कर लेते हैं कि नहीं। या फिर एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें एक गुरु कहते हैं अपने शिष्य को, कृष्णदास अभी तुम्हें ये सेवा करनी है, ड्यूटी वर्शिप करनी है, क्योंकि तो गुरु महाराज हृदय का भी नहीं कर सकता मैं, वो हर समय जब भी उसको गुरु कुछ बोलते थे उस समय कुछ ना कुछ बहाना देता था। हाँ, तो बहाना देने की जो प्रवृत्ति है हाँ ये भी एक बहुत डेंजर है। तो इसलिए कहा है कि इसको ख़त्म करना है तो दृढ़ता से एक प्रयास करना होगा और कृष्ण को पकड़ के रखना होगा हमें, कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को या कृष्ण कृष्ण भावना को। हिपोक्रिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या कहेंगे इसको,
हिपोक्रिटिकल
हिपोक्रिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, ये मेन जो अनर्थ है। तो लेकिन कृष्ण भावना में हम आते हैं तो ऐसे जो गुरु हैं सो कॉल्ड गुरु उनका वध कर देते हैं, और इस्कॉन में जो भक्त आता है वो तुरंत पहचान लेता है हाँ पूतना के प्रतिनिधियों को, टाइम नहीं लगता। हाँ, जैसे नया नया कोई आता है, हमें भी अनुभव है, जब एक दो माला करते थे प्रभुपाद के दो तीन ग्रंथ पढ़े तो कभी टीवी देखते थे हाँ मॉर्निंग जो प्रोग्राम्स आते हैं संस्कार या आसाराम बापू, तो वहाँ कुछ सुनते थे तो तुरंत भक्तों को बोलते थे कि क्या है वो जो स्वामी भगवान को निराकार कह रहा है लेकिन प्रभुपाद ने तो ऐसे नहीं लिखा, तुरंत पर्दाफाश करते। मतलब इतनी तो बुद्धि आ जाती है कि ऐसे लोग क्या है ढोंगी हैं हाँ पूतना के प्रतिनिधि हैं। तो जितना अधिक कृष्ण भावना में हम लगेंगे उतना ही पूतना रूपी जो प्रवृत्ति हमारे अंदर भी इसका वध होगा। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा जब तक कृष्ण भावना का प्रचार होते रहेगा तब तक पूतना अपने आप क्या होगी डिस्ट्रॉय होगी, मतलब मर जाएगी, पूतना के जो कार्यकलाप है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद और उनके जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, इन दोनों की खासियत क्या है कि इन दोनों ने अपना जो मोमेंट है कृष्ण भावना जो आंदोलन है इसमें क्या किया है, दो चीजें उन्होंने प्रदान की है। वेपन्स कहा जाता है पूतना के विरोध में कार्य करने के लिए, पूतना की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि पूतना ने क्या किया पहले सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और कुछ और कार्य किया, तो वैसे ही हमारे अंदर भी ये जो प्रवृत्ति है तो ये खत्म होगी। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि इसके लिए वेपन है वो है क्या, एक है श्रीमद् भागवतम और दूसरा है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो भक्ति सिद्धांत महाराज और श्रील प्रभुपाद इन दोनों ने क्या किया है कि आपने जब उनका मठ उन्होंने मठ की स्थापना की थी तभी भी ये दो चीजों को बड़ा प्राधान्य दिया था, और प्रभुपाद ने इस्कॉन के अंदर भी ये दो चीजों को बहुत अधिक प्राधान्य दिया है। प्रभुपाद ने जो अपना ज्यादा समय व्यतीत किया है किसी चीज के लिए 11 साल में तो वो है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम को अनुवाद करने के लिए, और दूसरा हरिनाम संकीर्तन। स्वयं प्रभुपाद ने भी किया कीर्तन हाँ हरिनाम संकीर्तन, और उनके शिष्यों को भी प्रभुपाद ने सिखाया। तो ये जो दो चीजें हैं ये जब तक होती रहेगी हमारे जीवन में भी और संस्था में भी हाँ, तो ये जो पूतना जैसी प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, अन्यथा पूतना जैसी प्रवृत्ति बहुत इजीली हमारे हृदय में जागृत हो सकती है। तो इस प्रकार से धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार करना ये पूतना का स्लोगन है। तो ये जो प्रवृत्ति है ढोंग करने की तो ये खत्म होगी जब हम इन दो चीजों का सहारा लेते हैं और ये पूतना के पास टाइम को सुनते हैं बड़े गंभीरता से सीरियसली हाँ या पढ़ते हैं। तो ये जो चीटिंग करने की जो भावना है वो क्या हो जाती है हमारे अंदर से कम हो जाएगी। तो ये बड़ा विशेष पास टाइम है पूतना वध जिसको आप पढ़िए समय निकाल के। हाँ, फेथ की कमी जिसमें होगी सही में होती है क्या ये जो ढोंग करने की चीटिंग प्रोपेंसिटी।
अच्छा,
भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं तो हमें आज मैंने कह रहा हूँ है ना, कौन कह रहे हैं, हाँ भक्ति विनोद ठाकुर की वाणी है ये। आचार्य, क्योंकि कृष्ण ज्यादा चिंतित होते हैं जब उनका भक्त कोई स्टेटमेंट देता है। भन्ना में भक्त्या प्रणश्यति, भगवान ने बोला, और जैसे ऐसी कई चीजें हैं, तो कृष्ण ज्यादा ध्यान देते हैं, वो अपनी वाणी को तोड़ देते हैं, मतलब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, तोड़ दी, लेकिन अस्त्र उठा लिया, किसके लिए? हाँ, नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता कि नहीं, नाश नहीं होगा मेरे भक्त का। तो उस दिन भीष्म ने कहा था कि अर्जुन तभी बचेगा, हाँ, या तो कृष्ण हथियार उठाए या तो फिर अर्जुन फिनिश। तो भीष्म भी उनके महान भक्त हैं, है ना, भीष्म विशेष भक्त। तो ये है पूतना वध से हमें शिक्षा थोड़ी सी, है ना, इन पास टाइम्स को कभी आप पर्सनली मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि इन लीलाओं को, वध के पास टाइम्स को आप सुनोगे तो जो अनर्थाज हैं ढीले होने लगेंगे और गिरने लगेंगे ऐसे। क्योंकि आपने पकड़ के रखा है एक्चुअली इस प्रोपेंसिटी, हम जब तक नहीं निकालेंगे ना सोचेंगे नहीं कि मुझे निकालना ये आदत, बैड हैबिट, हाँ, ये दुर्गुण, तो नहीं हमें, क्योंकि उसमें स्वार्थ है हमारा कुछ, ये बैड हैबिट्स की है, कुछ ना कुछ आनंद मिलता है उससे, स्वार्थ हमारे हैं। उतना बात के मन को तो हम साधु गुरु शास्त्र से चेक कर सकते हैं, हाँ, साधु गुरु शास्त्र की शिक्षाओं से मन को चेक कर सकते हैं। हमारा मन कहता है, जैसे अभी मन की चांटिंग हमें करना चाहिए मॉर्निंग में, मन कहता है नहीं अभी मैं कुछ और करता हूँ, बहुत अच्छा होगा मैं भागवतम पढ़ूंगा आके से लिख, हाँ, तो चेक करें वैष्णव से, है ना।
और जो बाहर के कुछ लोग होते हैं जो हमें कृष्ण भावना की ओर पढ़ाते हैं लेकिन माइंड बहुत गलत है,
क्या
कुछ लोग उपदेश तो कृष्ण का नाम का देते हैं लेकिन उनके अंदर की हम जान नहीं सकते कि उनके अंदर
तो प्रभु फिलोसफी है शास्त्रों को, इसलिए वैष्णव जो ऑथराइज्ड वैष्णवाज है उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उनके टीचिंग्स को सीखते हैं, तो तुरंत हमें पता चलता है कि पूतना के प्रतिनिधि कौन कौन है कि नहीं। जैसे मैंने कहा था कि शुरुआत में इस्कॉन में आ जाता है कोई भक्त, तुरंत उसको पता चलता है, कहाँ उसने गलती से कुछ सुन भी लिया, कहाँ भाव प्रवचन या कुछ पढ़ लिया, तो उसको पता चलता है कि ये ओशो क्या है, ये मायावादी क्या है, ये सब चीज़ें। और अभी ना टाइम हो गया, 12 बज गए ना कि 12:15, 12 बज गए, फिर और करते हैं कितने, 12:30 तक और एक आसुर करें, और एक आसुर की चर्चा करें, छोटा आसुर है, शक्तासुर, कौन सा छूट नहीं जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ओ तृणावर्त है क्या, तृणावर्त थोड़ा बड़ा है, तृणावर्त बड़ा विशेष जो यह है उसको अनर्थ को प्रकट करता है, विशेष जो स्कॉलर बनना चाहते हैं उनके लिए वो डेंजर है, तृणावर्त शिक्षा देता है कि जो ज़्यादा स्कॉलरली अपना दिखाना चाहते हैं। और शक्तासुर भी हैं, शक्तासुर भी लेजीनेस को प्रकट करता है, शक्तासुर का आता है ना, शकट बना था ना, शकट भंजन पास टाइम है ना कृष्ण बुक में, गाड़ी व्हीकल ठेला बना था जिसके ऊपर सामान था, भगवान ने अपना चरण लात मारे थे, तो वो उसके मर्ज हो गया था उसके साथ ही, तो चर्चा करेंगे, मुझे लग रहा है कि अभी होगा नहीं वो आसे। मुझे पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु का पास, एक भजन गाते हैं, ठीक है, गाते हमारा जीवन गाते हैं, कोई भक्त पकड़े यहाँ, ये थोड़ा ये होता है, इधर बैठ जाइए, करताल बजाइए उसमें नहीं आ, लेकिन चांट करे आप इस सॉन्ग पीछे होगा होगा साथ में ट्राई करें, तीन चार लोग एक साथ देखिए। इधर एक दे दीजिए ना, तीन चार उधर नहीं गीते कुछ है, अभी शुरू कर देते। आप यहाँ देख लो, यहाँ देख हृदय गौर प्रेमानंदे, ठीक से बैठिए जरा। हाँ ऐसे कोई हमारा जीवाना सदा पापे रता ना एक पुण्य राले
मोहिता हिंसा गर्वा विदुषाना करवा विभूषणा सुकार्य विरात आकार्य उद्योगे आमे निद्रलशहत सुकार्य विरात आकार्य उद्योगे आमे प्रतिष्ठा लगे षठ्याचराना लोभ सदा कामे
दूसरा। दूसरा गीत गाएंगे हम।
अनुवाद पढ़िए,
अनुवाद पढ़िए, इसमें से पढ़िए थोड़ा।
मेरा जीवन सदा पाप पूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ, अतः मुझ में पूर्ण लेश मात्रा भी नहीं है। मैंने दूसरों को अत्यधिक कलेश दिया है, वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है।
मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पाप पूर्ण कार्यों को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। मैं सदा झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती
है।
मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं, से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड मेरे आंखों में है।
वेरी गुड।
मेरे निंद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को निकाल कर लिया। मैं सदा लालच में वश में रहता हूँ तथा काम इच्छा में से भरा हुआ।
क्या हो रहा है? हाँ पढ़िए, ठीक है आप पढ़िए, ठीक है आप पढ़िए।
मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूँ। मैं समस्त पुण्य कर्मों से भिन्न हूँ तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ।
और
अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण के चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ।
इसको कहा गया है कि जो गीत है ना दैन्य कैटेगरी में आता है। शरणागति छह प्रकार के जो शरणागति है उसमें दैन्य की कैटेगरी में भक्त इतना विनम्र होकर बोल रहा है। और ये सारे लक्षण एक ग्रह मेधी के दिए गए हैं। ग्रह मेधी होता है ना,
तो ब्रह्मचारी के लिए
आप ब्रह्मचारी के लिए भी हैं। ब्रह्मचारी क्या अभी है हमारी तो हमारी सिचुएशन भक्ति विनोद ठाकुर तो एक कंडीशन यही तो हम कल ही तो सोच रहे थे उत्साहमय में। हाँ हमें लगता नहीं कि मैं ऐसा हूँ, मेरा जीवन हमारा पाप से थोड़ी भरा पड़ा, मैं तो सब भक्तों पर कृपा करता हूँ। है कि नहीं भावना होती थोड़ी सी सेवा
देता अपनी।
जानते
हैं
मतलब ये तो है
क्या
मतलब
लेकिन देखो ना ये वैष्णव की खासियत क्या है कि वो रोल अदा करते हैं कंडीशन सोल का। वैष्णव क्या करते हैं एक बद्ध जीव का रोल अदा करते हैं और हमारे लिए ये लिखे हैं, उनके लिए नहीं है कि हम उनके बारे में सोचे। ये तो हमारे ये जिसको कहा गया है शीशा, आपको देखना है कि मैं कौन हूँ इसको देखिए। तो जैसे शीशे में देखते हैं तो देखना है कि अंदर है, तो बाहरी रूप दिखाई देता है नाक तिलक कंठी सब चीज़ें, लेकिन देखना है कि इधर क्या है, हृदय को चेक करना है। इस गीत को कहा गया है शीशा, जिसका आपका मुख कमल जो दिखाई देगा आपको क्लियरली हृदय की जो स्थिति है। और इनका एक गीत गाते हैं दीनता ह्यूमिलिटी विनम्रता। हे मनोगुरु सेवन होली नेम के ऊपर सॉन्ग है ना इनके होली नेम। गीत नंबर 7 देखिए, हम ट्राई करते हैं गाना। प्रभु है एमना दुर्मति संसार भीतर है, बढ़िया एमना दुर्मति होगा उसमें, एमन फेमस सॉन्ग है, इसे ट्यून में गाएंगे। मुझे एक ही ट्यून आती है।
Thank you.
शरणागत बने रहिए, लेकिन पिता वापस।